नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
नहीं जो नाप सके प्रभु की ऊंचाई। जानते हैं फिर भी हम कोशिश करते हैं, जानते हैं फिर भी हम कोशिश करते हैं। कितनी लिख सकते हैं हम प्रभु तुम्हारी अच्छाई। ऐसा गोताखोर नहीं जो नाप सके प्रभु की गहराई। सहारे चांद तारे कहीं रोशनी से अपने रोशन कर दिया। जहां मिट्टी उठाकर तुमने बनाया एक नया इंसान। ऐसा गोताखोर नहीं जो नाप सके प्रभु की गहराई। ऐसा गिरियारोहक नहीं जो नाप सके प्रभु की ऊंचाई। प्यार से तुमने भर दी, गुलशन में फूल खिले पावन हुई धरती। शांति का संदेशा चारों ओर जा बसा। खोजती इंसान को और आए तुम बन के मसीहा। ऐसा गोताखोर नहीं जो नाप सके प्रभु की गहराई। ऐसा गिरियारोहक नहीं जो नाप सके प्रभु की ऊंचाई। जानते हैं फिर भी हम कोशिश करते हैं, जानते हैं फिर भी हम कोशिश करते हैं। कितनी लिख सकते हैं हम प्रभु तुम्हारी अच्छाई।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि लाजर, जो मार्था और मरियम का भाई था, बीमार था और परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से उसे जीवन प्रदान किया। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इसके पूर्व के हम अध्ययन में आगे जाएं, आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है, ताकि प्रभु हम आपके जीवित वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक की आत्मिक आँखों को, कानों को, हृदय और विचारों को खोल दें, ताकि जब हम आपके वचन को सुने तो आपके जीवित वचन हमारे हृदयों में से बातचीत करने पाए। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो दुखी हैं, निराश हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं और कष्ट में हैं। दयालु प्रभु, आप उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए, ताकि वे भी इस बात को समझने पाए कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी जरूरतों को समझते हैं। हाँ प्रभु, इस समय आप हम सब की सहायता करें। प्रार्थना आपके बेटे, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें, आमीन। मित्रों, हम अपने पिछले अध्ययन में देख रहे थे कि यीशु लाजर के गांव आया था, जहां मार्था ने स्वीकार किया कि वह परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और यीशु ने उससे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन वही है और उसमें विश्वास करने वाला मरने के बाद भी जीवित रहता है। हमने यह भी देखा था कि यीशु रोया क्योंकि वह मानव था। यीशु ने लाजर को पुकारा और वह चलकर कब्र से बाहर आ गया। वहां अनेक यहूदी भी यरूशलेम से आए थे और उन्होंने यह चमत्कार देख यीशु में विश्वास किया, परंतु कुछ ने यरूशलेम जाकर धर्म गुरुओं को यह समाचार सुनाया। समाचार सुनकर महायाजक कैफा ने आदेश दिया कि संपूर्ण राष्ट्र को बचाने के लिए एक का मरना आवश्यक है, और उन्होंने उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने आराधकों को भी आदेश दिया कि उसे देखें तो उन्हें सूचित करें। मेरे मित्रों, यीशु वहां से फिर एकांतवास में चला गया। अब हम देखेंगे कि यीशु का समय आ गया है, अतः वह यरूशलेम प्रवेश की तैयारी में है। यहूदी और यूनानियों द्वारा यीशु की गवाही। यूहन्ना में यीशु अपनी सार्वजनिक सेवा का आरंभ गलील के काना नगर में विवाह उत्सव से करता है, और लाजर के घर भोजन करके वह अपनी सेवा का समापन करता है। मित्रों, हमारे प्रभु यीशु ने परिवार को महत्व दिया है, मसीही परिवार को। इसी कारण परमेश्वर ने विवाह को आशीषित ठहराया है। हम यूहन्ना 12 अध्याय उसके 1-3 पद में पढ़ते हैं, फिर यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। तब मरियम ने जटामासी का आग सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। मेरे मित्रों, यरूशलेम में धर्म गुरु यीशु की हत्या का षड्यंत्र रच रहे थे, और यहाँ बैतनिया में उसके मित्र उसे भोज खिला रहे थे। ठीक क्रूस की घटनाओं में हम इस भोज पर ध्यान देंगे। मृतकों में से जिलाया गया लाजर मसीह की संगति में था। यीशु ने कहा था कि वह पुनरुत्थान और जीवन है, और उसमें विश्वास करने वाला मर कर भी जीवित रहेगा। हम यूहन्ना 11:25 में पाते हैं, यह लाजर के बारे में सच था, वह मर कर जीवित हुआ था। आत्मिक रूप में तो यह आपके और मेरे लिए भी सच ही है। हम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे, हमें प्रभु यीशु का अनुभव नहीं था, उसके साथ हमारी संगति भी नहीं थी। अतः उसने हमारे लिए कहा, जिसे हम यूहन्ना 11:26 में पढ़ते हैं, जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। मेरे प्रियो, कैसा मनोरम दृश्य है। लाजर मृतकों में से जी उठा है और मसीह की संगति में है। दूसरी ओर मरियम मसीह के चरणों में बैठकर मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ रही है। तीसरी ओर हम देखते हैं कि मार्था मसीह की सेवा में है। उसका वरदान था कि वह अच्छा खाना पकाए, उसी से वह मसीह का महिमान्वन कर रही थी। आज भी कलीसिया में यही तीन बातें आवश्यक हैं: मसीह में नया जीवन, उपासना एवं उसकी सराहना और उसकी सेवा। यह सब एक परिवार की घटना है जहां मसीह अपनों के साथ उपस्थित है। आज हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, अतः कलीसिया को फिर से परिवार में आ जाना चाहिए। मेरे मित्र, अब मरियम के प्रेम की गहराई को देखिए। उसने प्रभु के पांव मूल्यवान इत्र से धोए और अपने बालों से उन्हें पोंछा। कुछ लोगों के विचार में यह वही घटना है जिसमें मरियम को वेश्या बताया गया था। घटनाएं अवश्य एक सी हैं, परंतु यह मरियम एक प्रतिष्ठित महिला है। इत्र की सुगंध से घर भर गया था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 4 से 6 पद में पढ़ते हैं, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला जो उसके पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए न कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यहां पर ध्यान दीजिए, यहूदा इस्करियोती अपना वास्तविक स्वभाव दिखा रहा है। वह खजांची था, उसे वास्तव में गरीबों की चिंता नहीं थी। वह तो अपना स्वार्थ देख रहा था, क्योंकि वह चोर था। वह पैसों का घपला भी करता था। वह चाहता था कि मरियम का पैसा भी गरीबों के लिए दे दिया जाए तो वह उसमें से अपना कमीशन बना लेगा। मेरे मित्रों, पैसे का सदुपयोग ही हमारी सच्ची परख है। हम पैसा किस काम में लगा रहे हैं? 300 दिनार एक मजदूर की वार्षिक आय होती थी। जटामासी का इत्र बहुत मूल्यवान था। मरियम अपने आप को उसके उपयोग के योग्य नहीं समझती थी, अतः उसने प्रभु यीशु के चरण धोने के लिए उसे उपयोगी समझा। मेरे मित्रों, यदि हम भी यीशु के चरणों में बैठे तो हम भी उसे सबसे बहुमूल्य वस्तु देंगे। मरियम ने वह इत्र संगमरमर के पात्र में सुरक्षित रखा हुआ था, क्योंकि वह हिमालय पर्वत से आता था, अतः बहुत ही महंगा था। क्या आप जानते हैं कि उसने वह इत्र क्यों खरीदा था? मरणोपरांत उसकी पार्थिव देह पर लगवाने के लिए, परंतु उसने यीशु से अत्यधिक लगाव के कारण उसके पांव उससे धो दिए। उसकी सुगंध से उसका घर ही नहीं संपूर्ण संसार भरा हुआ है। हम यूहन्ना 12 अध्याय उसके 7 और 8 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दे, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यह एक असामान्य घटना थी। यीशु के कहने का अभिप्राय यह था कि वह दर्शा रही थी कि वह यीशु के साथ मृत्यु में प्रवेश कर रही थी। अनजाने में वह यीशु को संसार के पापों के निमित्त मृत्यु के लिए तैयार कर रही थी। यहूदा और मरियम में कैसी असमानता थी। यहाँ ज्योति और अंधकार का समागम है। मरियम ज्योति थी और यहूदा अंधकार। यीशु ने कहा कि गरीब सदा हमारे साथ रहेंगे, परंतु वह हमारे साथ सदा नहीं रहेगा। यीशु की इस बात से आप यह अर्थ न लगाएं कि वह हमारे साथ सदा रहने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा है। उसके कहने का अर्थ यह था कि गरीबों की सेवा तो हम हर समय कर सकते हैं, परंतु गरीबों की सेवा करने में हम उसके चरणों से दूर न हो जाएं। वह दिन भी आता है जब उसके पास हमारे लिए जो है उसे पाने में देरी हो जाएगी। हमारे पास पत्र आते हैं जिनमें लिखा होता है, काश मुझे बाइबल की शिक्षा उस समय मिल जाती जब मैं युवा ही था। मेरे मित्रों, उसके बारे में अभी सीखें। उसके चरणों में बैठने का समय कामों में ना लगा दें, ताकि आप उसके जीवन की बातों को सीख सकें। हम यूहन्ना 12 अध्याय उसके 9 से 11 पद में पढ़ते हैं, यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि वह वहां है और वे न केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब महायाजकों ने लाजर को भी मार डालने की सम्मति की क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, मेरे विचार में वे यीशु से अधिक लाजर को देखने आए थे। यह विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, परंतु जिज्ञासा है। आपको ध्यान होगा कि जब यीशु पहली बार यरूशलेम आया था तब भी उन्होंने ऐसा ही विश्वास दिखाया था, परंतु लिखा है कि यीशु ने उन पर भरोसा नहीं किया था। हम आगे देखते हैं यीशु का यरूशलेम में प्रवेश, यूहन्ना 12 अध्याय उसके 12 पद में। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है। देखिए यूहन्ना अनादि अनंत से आने वाले को कैसे सांसारिक समय में जोड़ता है। यह समय फसह के उत्सव का था और जनसमूह को एक आशा थी। आपको स्मरण होगा कि मत्ती के वृतांत में अर्थात वर्णन में पूर्व देश से ज्योतिषी आए थे और उन्होंने पूछा था कि यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ हुआ है। यहाँ उसकी सेवा के अंत में फिर से उसे राजा कहा जा रहा है। हम यूहन्ना 12 अध्याय उसके 13 से 15 पद में पढ़ते हैं। खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होशाना, धन्य इसराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को एक गधे का बच्चा मिला तो उस पर बैठा, जैसा लिखा है कि हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह यीशु का शासक और राजा के रूप में सार्वजनिक प्रदर्शन था। अब उसका उपदेश देना एवं शिक्षा देना समाप्त हो गया था। यह उसका भविष्यवाणी पूर्ति का कार्य है। अब तक तो वह भेड़ द्वार से आता था, परंतु अब वह अपनी सेवा के अंत में जन प्रदर्शन में प्रवेश कर रहा है। वह भविष्यवाणी पूरी करने के लिए ऐसा करता है। जैसा लिखा है, वह गधे पर बैठकर आया कि वचन पूरा हो और परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। यूहन्ना का वृतांत छोटा है, परंतु वह स्पष्ट कहता है कि यह जकर्याह अध्याय 9 उसके 9 पद की भविष्यवाणी की पूर्ति है। हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। मेरे मित्रों, यीशु अपने आप को मसीह दर्शाने में खुल्लम खुला आता है और जन साधारण उसकी होशाना, धन्य इसराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। इसराइल अपने राजा के साथ क्या करेगा, उसे क्रूस पर चढ़ाएगा। हम यूहन्ना 12 उसके 16 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया था। यूहन्ना इस घटना के वर्षों बाद सुसमाचार वृतांत लिखा था और वह स्वीकार कर रहा है कि यीशु का यह कार्य उस समय उनमें से किसी की समझ में नहीं आया था, परंतु उसके पुनरुत्थान के बाद वे इसे समझे थे। मरियम एकमात्र ऐसी स्त्री थी जो यीशु के साथ उसकी मृत्यु का अनुभव कर पाई थी। हम यूहन्ना 12 अध्याय उसके 17 से 19 पद में आगे पढ़ते हैं। तब भीड़ के लोगों ने जो उस समय उसके साथ थे यह गवाही दी कि उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म किया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुम से कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। मेरे मित्रों, यहाँ परिस्थिति विस्फोटक थी क्योंकि पर्व के लिए असंख्य जन यरूशलेम आए हुए थे और यीशु द्वारा लाजर को पुनर्जीवित करने के कारण वे अति उत्साह से भरे हुए थे। वे यीशु की अपेक्षा लाजर को देखने के जिज्ञासु थे, परंतु फरीसी यीशु को मार डालना चाहते थे। यीशु यदि चाहता तो ऐसी परिस्थिति का लाभ उठाकर वास्तव में उनका शासक बन सकता था, परंतु आपका और मेरा उद्धार नहीं होता। उसे तो वास्तव में हमारे उद्धार के निमित्त क्रूस की मृत्यु स्वीकार करना आवश्यक था। अतः यह जोश कुछ समय का था। यरूशलेम प्रवेश उसका विजय प्रवेश नहीं था। उसका विजय प्रवेश एक भावी घटना है जब वह फिर से आएगा। उस समय वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होगा। मेरे मित्रों, यीशु ने अपने आप को सार्वजनिक रूप से प्रकट किया, परंतु होशाना चिल्लाने वाले दूसरे दिन चिल्लाने लगे कि उसे क्रूस दो, उसे क्रूस दो। उन्होंने अपने राजा का इनकार किया। अब हम आगे देखते हैं कि यूनानियों का यीशु को ढूंढना। यूहन्ना के सुसमाचार 12 अध्याय उसके 20 से 22 पद में हम पढ़ते हैं, जो लोग उस पर्व में भजन करने आए थे उनमें से कई यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की कि श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिपुस ने आकर अंद्रियास से कहा, तब अंद्रियास और फिलिपुस ने यीशु से कहा। ध्यान दीजिए, मंदिर में स्त्रियों का स्थान अलग था, उसी प्रकार अन्य जातियों के लिए भी अलग स्थान था। वहां यूनानी थे जो यीशु को देखना चाहते थे। अतः फिलिपुस को, जो यूनानी भाषा बोलता था, परिचित सा देख वे उसके पास सीधे गए। फिलिपुस शिष्टाचारी था, अतः वह अंद्रियास के पास गया। वे दोनों यूनानियों को यीशु के पास लाए। तब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 12 अध्याय के 23 और 24 पद में, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। मित्रों, जब यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, तो इसका अर्थ है कि वह बड़ी गंभीर और गहरी बात कहने जा रहा है। परंतु जब वह कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा है। मेरे मित्रों, यहां पर मुझे और आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर मुझे और आपको उन गंभीर और महत्वपूर्ण बातों को समझाना और सिखाना चाहते हैं, ताकि हम इस बात को जान लें कि वह हमारा राजा है। न केवल शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से वह हमारा संचालन करता है, क्योंकि वही मुझे और आपको इस संसार में उद्धार देने के लिए आया, और वह क्रूस के निकट बढ़ रहा है ताकि वह आपके और मेरे और सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर में ले ले और मेरे बदले में और आपके बदले में मर जाए और उस पवित्र लोहू को बहा दे जिसके द्वारा से मैं और आप उद्धार को प्राप्त करें। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तो इसका अर्थ है कि अत्यधिक गंभीर एवं महत्वपूर्ण बात, और वह है पद 24 और 25। कृपया इस पर आप अवश्य ही ध्यान दें कि वह आपसे और मुझसे बहुत गंभीर बात कहना चाहता है, और वह यह है कि हम उसे जान लें। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। इसके पूर्व कि हम आज के अध्ययन को समाप्त करें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को जांचें और देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो उसे देखना चाहते थे, और उनमें से कई लोग थे जो यीशु को मार डालना चाहते थे। अब प्रश्न यह है कि हम उनमें से किस समूह के लोग हैं? क्या हम यीशु को मारने वालों में से हैं, या हम उस पर विश्वास करने वालों में से हैं? यह मुझे और आपको चुनना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य और जीवित वचन के लिए, जिसके माध्यम से आपने हमसे फिर से एक बार बातचीत किया है और इस बात को हमें स्मरण दिलाया है कि आप हमारे राजा हैं और आप हमसे बहुत महत्वपूर्ण और गहरी बात बताना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि आप हमसे बातचीत करें, आपके वचन हमारे हृदय में कार्य करें। आप हमारे पापों को, हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें अपने मार्ग में चलाएं, हमें पवित्र करें, ताकि इस संसार की सारी बुराइयों को छोड़कर हम आपकी ओर फिर सकें। इस समय फिर से बार हर एक श्रोता भाई बहनों को आपके निकटता में लाते हैं और विनती करते हैं प्रभु जी कि आप उनकी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मैंने अपना मन ईशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन ईशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन ईशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन, निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन ईशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन, अगर मान लो यह विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी अगर मान लो यह विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी खुशी पाओ, तुम भी शांति पाओ, तुमसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन यीशु को दे, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन, निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन यीशु को दे यीशु को दे दिया, आज से मैं उस